नारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार श्री हरिदास ठाकुर की ताई गौर हरि प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 अध्याय 21 श्लोक संख्या 25। यही है ना, 25 ही है ना, 25 ही है ना। सा कृतव्याम सुख कन्यायाम ब्रह्मदत्तम अजीजनात जोगी सा गवि भार्यायाम विश्वक्षेनाम अधासुताम सकृतव्याम सुख कन्यायाम ब्रह्मदत्तम अजीजनत जोगी सगवि भर्यायाम विश्वक्षेनाम अधासुताम सकृतव्याम सुख कन्यायाम ब्रह्मदत्तम अजीजनत जोगी सगवि भार्यायाम विश्वक्षेनाम अधासुताम सकृतव्याम सुख कन्यायाम ब्रह्मदत्तम अजीजनत जोगी सगवि भार्यायाम विश्वक्षेनाम अधासुताम। क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे पढ़ो, बैठो पढ़ो डायरेक्ट। ब्रह्म दत्तम अजीजनत योगी सगय भर्यायाम विश्वक्षेनाम अधासुताम। आप लोग पढ़ो, नए लोग भी पढ़ो। ब्रह्म दत्तम अजीजनत योगी सगवि भार्यायाम विश्वक्षेनाम अधासुताम। आप पढ़ो स्वकृताभ्याम सुख कन्यायाम ब्रह्मदत्तम अजीजनत योगी सकव्यायाम
मृदंग बजा रहे तो पढ़ो भी अच्छा पढ़ो पढ़िए उत्तम श्लोक
सकृतव्याम सुख कन्यायाम ब्रह्म दत्तम अजि जनत योगी स गवि भार्यायाम विश्वक्षेन मदाश्रितम
माताजी
सकृतव्याम सुख कन्यायाम ब्रह्म दत्तम अजि जनत
शब्दार सह उसने नीप
कृतव्याम कृत्वी नामक पत्नी से सुख कन्यायाम सुख की कन्या से ब्रह्मदत्तम ब्रह्मदत्त नामक पुत्र अजीजनत उत्पन्न किया जोगी सह वह ब्रह्मदत्त गवी गौ या सरस्वती नाम की भार्यायाम पत्नी के गर्भ से विश्वक्षेनम विश्वक्षेन को अधात उत्पन्न किया सुतम पुत्र अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की सुख की पुत्री अर्थात निप की पत्नी कृत्वी के गर्भ से राजा निप के ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ ब्रह्मदत्त महान योगी था उसकी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्षेन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ दोहराइए सुख की पुत्री अर्थात निप की पत्नी कृत्वी के गर्भ से राजा निप के ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ ब्रह्मदत्त महान योगी था उसकी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्षेन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ तात्पर्य यहाँ पर जिस सुख का वर्णन है वह भागवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी से भिन्न है व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तार से पाया जाता है उसमें बतलाया गया है कि व्यासदेव ने जवाली की पुत्री को अपनी पत्नी बनाया और दोनों ने अनेक वर्षों तक साथ साथ तपस्या की तब व्यासदेव के वीर्य से उसे गर्भ रह गया यह बालक अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहा और जब पिता ने बालक से गर्भ से बाहर आने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया कि वह तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक उसे माया के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त न कर दिया जाए तब व्यास देव ने बालक को आश्वस्त किया कि वह माया से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा किंतु बालक को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि पिता अब भी अपनी पत्नी तथा बच्चों में लिप्त था। तब व्यास देव द्वारका गए और भगवान को अपनी समस्या बतलाई। व्यास देव की प्रार्थना पर भगवान उनकी कुटिया में आए और गर्भस्थ बालों को आश्वस्त किया कि वह माया से मुक्त रहेगा। इस पर बालक गर्भ से बाहर आया और तुरंत ही परिव्राजकाचार्य के रूप में घर से बाहर चला गया। जब पिता व्याकुल होकर अपने साधु पुत्र सुखदेव गोस्वामी का पीछा करने लगा तो उसके साधु पुत्र ने एक दूसरा नकली सुखदेव उत्पन्न कर दिया। उसके साधु पुत्र ने एक दूसरा नकली सुखदेव उत्पन्न कर दिया जो बाद में गृहस्थ बना। इसीलिए इस श्लोक में वर्णित सुख कन्या इसी नकली सुखदेव की कन्या थी। मूल सुखदेव तो आजीवन ब्रह्मचारी बने रहे। तो इसमें भरत वंश के वंशावली का हम लोग वर्णन सुन रहे हैं। भरत वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए, ऋषभ देव से लेकर के अनेक राजाओं का इतिहास इसमें आप लोग सुने हैं। इसमें इसके पीछे एक बहुत प्रभावशाली राजा रंती देव, इस वंश के ऋषभ देव राजर्षि भरत के तीसरे प्रभावशाली राजा जो है रंती देव हुए थे। रंती देव की कथा आप लोग सुने किस तरह से उनके राज्य में बहुत सूखा पड़ गया था, भीषण अकाल। 48 दिन उपवास कर चुके थे, 48वें दिन उनको खाने के लिए कुछ घी दूध से बना व्यंजन मिला था और कुछ जल मिला था। प्रजा भूख और प्यास से ग्रसित थी। राजा रंती देव को जब खाने को मिला तो उनके सामने कुछ अतिथि आ गए और कहे कि राजा हम बहुत भूखे हैं। तब कुछ अंश राज उस अपने ब्राह्मण अतिथि को दिए। फिर इसके बाद फिर एक अतिथि के रूप में एक चंडा लाता है कुत्ते के साथ, वो भी कहा मैं बहुत भूखा हूँ। ऐसे कर क्रमशः तीन अतिथि आए, उनके बाद जो कुछ भी है सब बांट दिए। अंततः भूख प्यास से राजा जो है अब शरीर छोड़ने वाले थे। तो उसी समय उनके समक्ष शिव और ब्रह्मा प्रकट हो गए, क्योंकि शिव और ब्रह्मा ही उनकी परीक्षा लेने के लिए चंडाल ब्राह्मण और कुत्ते के रूप में प्रकट हुए थे। तो रंती देव इस तरह से महान राजा थे जिनकी परीक्षा के लिए शिव ब्रह्मा देवता वहां पर आए थे। तो रंती देव के आगे के वंश परंपरा में अजमीर, दुमीड और पुरमीड और हस्तिन, इन राजाओं का इतिहास दिया गया है। राजा हस्ती के तीन पुत्र हुए थे, अजमीर, दुमीड तथा पुरमीड। अजमीर के वंशजों में प्रियमेध प्रमुख थे और उन सबों ने ब्राह्मण पद प्राप्त किया था। यद्यपि क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त किए वो लोग। फिर अजमीर का पुत्र जो है बृहदिशु था, ये सुनने में थोड़ा निरस है और इतना इतिहास भी सबको मालूम नहीं होगा, इतना नाम किसको याद होगा, इतना बड़ा डाटा, अपना मोबाइल नंबर ही नहीं याद है तो कहाँ से याद रहेगा लोगों को। बहुत लोगों को मोबाइल नंबर पूछे तो मेमोरी में चेक करते हैं, सेव में देख जाते हैं। इतना जो इतिहास दिया, बहुत लंबा इतिहास है राजाओं का, बहुत कोई आटा पिसान बांध कर पड़ेगा तब याद हो सकता है बहुत प्रयास करके अगर याद करेगा तब याद हो सकता है। तो अजमीर के पुत्र बृहदिशु, और बृहदिशु का पुत्र बृहद्धनु, और बृहद्धनु का पुत्र बृहत्काय, और बृहत्काय के पुत्र जयद्रथ, और जयद्रथ के पुत्र जो है रुचिरास हुए, और रुचिरास के पार, और पार के पृथुसेन, और पृथुसेन के नीप, और नीप के पत्नी का नाम जिसका यहाँ पर बने सुख कन्यायाम, सुख की पुत्री थी जिसका नाम था कृतिवी, कृतिवी सकृतव्याम सुख कन्यायाम, सुख कन्या यहाँ कहा गया है। तो दो सुख हुए हैं, एक व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, लेकिन यहाँ पर लिखा कि सुख कन्यायाम, वो ब्रह्मचारी रहे तो उनकी पुत्री फिर कहाँ से हो गई। सुखदेव गोस्वामी तो ब्रह्मचारी थे, लेकिन यहाँ लिखा कि सुख कन्या कृति, कृतिवी जो है सुख की कन्या थी सुखदेव गोस्वामी की, लेकिन ये सुखदेव गोस्वामी अलग हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत विस्तार से लिख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जाबाली की पुत्री बाटिका के गर्भ में 12 वर्ष रहे, 12 वर्ष अपने माँ के गर्भ में रहे। बड़ा आश्चर्य की बात है कि 12 वर्ष जो है सुखदेव गोस्वामी गर्भ में रहे, इसके बाद भी गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे। तो श्रील व्यासदेव उनसे आग्रह किए कि भाई अब तो बाहर आओ, तो कहे कि नहीं मैं बाहर नहीं आना चाहता हूँ, अगर कोई इसकी गारंटी लेता है कि माया का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा तब बाहर आ सकते हैं। बारह वर्षों तक रहा और पिता ने बालक से गर्भ से बाहर आने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया कि वह तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक उसे माया के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त न कर दिया जाए। बारह वर्ष व्यासदेव कहे कि नहीं आप बाहर आओ, तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो सुखदेव गोस्वामी देखे कि हमारे पिताजी खुद घर गृहस्थी में बंधे हैं, पुत्र परिवार, तो ये मुझे माया से कैसे मुक्त कर सकते हैं। तो श्रील व्यासदेव द्वारका गए भगवान श्री कृष्ण के पास, रूपा जी इसमें लिखते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किए तो भगवान उनके घर में पधारे, और भगवान श्री कृष्ण उनको आश्वस्त किए तब सुखदेव गोस्वामी गर्भ से बाहर आए। और प्रहलाद महाराज कितना वर्ष रहे गर्भ में, प्रहलाद महाराज कितने वर्ष रहे गर्भ में, 100 वर्ष। ये भी बड़ा आश्चर्य है कि माश्चर्यम, लोग बोलते हैं कि ताजमहल आश्चर्यजनक वस्तु है, तो मिस्र का पिरामिड आश्चर्यजनक वस्तु है, तो चीन का दीवार आश्चर्यजनक है, से 7 आश्चर्यजनक है। इन सबसे बड़ा आश्चर्य है कि प्रहलाद महाराज 100 वर्ष माँ के गर्भ में रहे, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। इससे बड़ा एक और आश्चर्य हो सकता है, यहनी यहनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम शेष अस्थावरम मिक्षन्ति किम आश्चर्यम यतः परम। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हर रोज लोग यमालय को जा रहे हैं, मर रहे हैं, हर रोज लोग कुछ न कोई मर रहे हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी तरह लोग मर रहे हैं, लेकिन जो लोग जीवित हैं वो सोचते हैं वो लोग पंचवर्षीय योजना बनाते हैं, 10 वर्षीय योजना बनाते हैं, बहुत हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमें यह मालूम नहीं है कि हमारी अवधि कब खत्म होने वाली है। कोई यह नहीं सोचता है, कोई भी ट्रेन पकड़ने के लिए जाता है या फ्लाइट, यह नहीं सोचता कि यह हमारी अंतिम यात्रा है। कोई विचार करे तो, अगर यह विचार कर ले तो जाना बंद हो जाएगा, गाड़ी मोटर प्लेन सब बंद हो जाएगा। अगर आदमी सब लोग यही विचार करें कि शायद ये अंतिम पड़ाव है तो सब टिकट कैंसिल हो जाएगा, सारा बर्थ खाली हो जाएगा। इसमें बहुत लोगों का अंतिम पड़ाव भी होता है, लेकिन यह नहीं मानते हैं कि हमारी अंतिम यात्रा है या आज अंतिम दिन है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हर रोज हम देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, हमारे गांव में, पड़ोस में, हमारे राज्य में, देश में, विदेश में, हमारे परिवार में भी, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे स्वजन मर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम अभी बहुत दिन रहेंगे। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो सुखदेव गोस्वामी जो यहाँ सुख कन्या का वर्णन है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी जन्म लिए तो जन्म लेते ही घर छोड़ करके चल दिए, महद विचलनम, महाप्रयाण की ओर चल दिए। कहाँ चल दिए? जंगल की ओर, परिव्राजक चार्ज बन गए। गर्भ से बाहर आए और तुरंत ही परिव्राजका चार्ज के रूप में घर से बाहर चल दिए। जब पिता व्याकुल होकर अपने साधु पुत्र सुखदेव गोस्वामी से आग्रह करने लगे कि रुको रुको, यम प्रवजन तमनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रे तितन्मय तया तर्व भिनेन्दुम, तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि, यम प्रवजंत मनुपेत उपेत कृत्यम। सुखदेव गोस्वामी का जब जन्म हुआ तभी उनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ था, उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, जैसे जन्म लिए और भाग गए। क्योंकि 12 वर्ष, कहीं कहीं 16 वर्ष का भी उल्लेख है, कहीं उल्लेख है कि 16 वर्ष तक रहे या कहीं 12 वर्ष तक। तो जैसे ही जन्म हुआ तुरंत यम प्रवजंत मनुपेत उपेत अनुपेत कृत्यम द्वैपायनो, द्वैपायन, व्यास देव को द्वैपायन कहा जाता है, कृष्ण द्वैपायन व्यास देव। क्यों कहा जाता है? कि जब सत्यवती के गर्भ से व्यास देव जन्म लिए तो सत्यवती लोकलाज से उनको द्वीप में फेंक दी थी, एक टापू में फेंक दी, पराशर के जोग जोग क्रिया से, जौगिक बल से सत्यवती ने व्यास देव को जन्म दी। तो अविवाहित थी, वो विवाह नहीं हुआ था, कुंती जैसे अविवाहित थी, कर्ण को जन्म दी। तो लोग लज्जा से वो द्वीप में फेंक दी थी, मलाह की लड़की थी, मछली मारती थी, तो द्वीप में, नदी या समुद्र के आसपास में बहुत सारे द्वीप होते हैं, तो द्वीप में फेंक दी थी। बाद में पराशर मुनि उनको द्वीप से लेकर आए, द्वीप से पायन माने प्राप्त किए थे, जिसको द्वीप से प्राप्त की, इसलिए द्वैपायन व्यास देव का नाम है, द्वैपायन व्यास देव। और एक और पहले विशेषण, कृष्ण द्वैपायन व्यास देव, माने कृष्ण ही द्वैपायन व्यास देव के रूप में, इसलिए उनको कृष्ण द्वैपायन व्यास देव कहा जाता है। तो व्यास देव अपने पुत्र को के विरह में, पुत्रे तितन्मया तरुव भिनेन्दु, पुत्र के विरह में पीछे पीछे भाग रहे थे कि रुको रुको, ये कहीं पुत्र वो भी जन्म लिया, जन्म लेते ही संन्यास की ओर चल दिया। तो पुत्र के शोक में कातर होकर पुकार रहे थे कि रुको, कातरया जुहाव, जब इस तरह से बुला रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी ने एक नकली सुखदेव गोस्वामी की उत्पत्ति की। प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं, अपने पुत्र के विरह में व्याकुल होकर अपने साधु पुत्र सुखदेव गोस्वामी का पीछा करने लगे, तो उसके साधु पुत्र ने एक दूसरा नकली सुखदेव गोस्वामी उत्पन्न कर दिया, अपना एक नकली जो है उत्पन्न कर दिए, अपना विस्तार कर दिए। जैसे कर्दम मुनि अपना विस्तार किए थे 9 रूपों में, कर्दम मुनि भी एक महान योगी थे, तो अपने जैसा 9 व्यक्ति को उत्पन्न किए। और इस तरह से देवहूति के साथ विहार किए, नौ विस्तार किए, नौ कन्याओं को जन्म दी देवहूति ने, नौ कन्याओं को, क्योंकि नौ रूप से देवहूति के साथ संग किए थे। और मंधाता के 50 कन्याओं के साथ सौभरि मुनि अपना 8 रूपों में विस्तार किए थे, 8 रूप में किए थे ना, 8 रूपों में विस्तार किए थे। इस तरह से योगी अपना विस्तार कर सकता है, 9 टाइम में 8 टाइम कर सकता है, हूबहु ऐसा ही देखेंगे तो पता नहीं चलेगा असली कौन है इसमें। तो कर्दम मुनि अपना 9 रूप में विस्तार किए, तो देखने में कोई अंतर नहीं था कि कौन पहले का है और बाद का कौन सा है। उसी तरह से सुखदेव गोस्वामी अपना एक नकली जो है रूप तैयार कर दिए, अपने पिता को सांत्वना देने के लिए। तो इस तरह से जो है वही नकली जो सुखदेव गोस्वामी सुख हैं उन्हीं की कन्या जो है ये है। सकृतव्याम सुख कन्यायाम ब्रह्म दत्तम अजी जनत योगी स गविभार्यायाम विश्वक्षेनम अधासुतम। यहाँ जिस सुख का वर्णन है वह भागवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी से भिन्न है। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। तो सुखदेव गोस्वामी इस तरह से जो माया सुख हैं, जो सुखदेव गोस्वामी अपनी माया से दूसरे सुख की रचना किए, तो वही गृहस्थ जीवन स्वीकार किए, गृहस्थ उनका विवाह हुआ और उन्हीं की पुत्री जो है कृत्वी है। सुख की पुत्री अर्थात निभ की पत्नी कृत्वी के गर्भ से राजा निप के ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त महान योगी थे, उसकी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्षेन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जैसी जैगिस व्योपदेशेन योग तंत्रम चकार उदकसेन तपस्तस्तात् भल्लाटो बारहदिश सवा। जैसी गव्य ऋषि के उपदेशानुसार विश्वक्षेन ने योग पद्धति का विस्तृत वर्णन संकलित किया। विश्वक्षेन से उदकसेन उत्पन्न हुआ और उदकसेन से भल्लाट, ये सभी पुत्र बृहदिशु के वंशज से। तो इसमें और ज्यादा क्या बोल सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ये बहुत नई बात है, बहुत कम लोग ही, मैं भी नहीं जानता था कि दो सुख हैं। तो जो माया सुख हैं यही जो है यहाँ पर इन्हीं का वर्णन मिलता है, इन्हीं की पुत्री जो है प्रतिथि जिसे ब्रह्मदत्त नाम के एक महान योगी उत्पन्न हुए थे। जो आगे चल के जैगी सभ्य ऋषि के उपदेशानुसार एक योग पद्धति का संकलन करेंगे, विश्वक्षेन ने योग पद्धति का विस्तृत वर्णन संकलित किया, अब विश्वक्षेन से उदकसेन उत्पन्न हुआ और उदकसेन से भल्लाट, ये सभी पुत्र बृहदिशु के वंशज से। इस श्लोक में ऐसा प्रमाण मिलता है जो भगवद गीता की इस कथन की पुष्टि करता है कि समाज के वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र गुणों तथा कर्मों के आधार पर परिगणित होते हैं। गुण कर्म विभाग क्षत्रिय वर्ण के अजमीढ़ के सभी वंशज ब्राह्मण बन गए, ऐसा उनके गुणों तथा कर्मों के आधार पर हुआ। इसी प्रकार कभी कभी ब्राह्मण या क्षत्रिय के पुत्र वैश्य बन जाते हैं। ब्राह्मणा वैश्यताम गता है। जब क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य के व्यवसाय या कर्म को ग्रहण करते हैं, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, तो वह निश्चित रूप से वैश्य गिना जाता है। दूसरी ओर वैश्य कुल में उत्पन्न व्यक्ति अपने व्यवसाय से ब्राह्मण बन सकता है, इसकी पुष्टि नारद मुनि ने की है। अस्य यल्लक्षणम प्रोक्तम, विविध वर्णों के सदस्यों की पुष्टि उनके लक्षणों से की जानी चाहिए, जन्म से नहीं। जन्म महत्वपूर्ण नहीं, गुण आवश्यक है। इस वंश में जो भरत महाराज के वंश में अनेक राजा हुए जो कुछ क्षत्रिय होकर के भी ब्राह्मण पद को प्राप्त किए, कुछ ब्राह्मण होकर के भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए लेकिन वैश्य कुल में आ गए, जो कृषि गोरक्षा कार्य में लगे तो वैश्य कहलाए। तो जन्म और गुण, कभी कभी जन्म से कोई ब्राह्मण होता है, जैसे श्रृंगी ऋषि समीक पुत्र श्रृंगी ऋषि जन्म से ब्राह्मण थे। अन्य युगों में विशेष करके सतयुग में त्रेता युग में लोग जन्म से ब्राह्मण गुण से प्रखर होते थे, जन्म से उनमें ब्राह्मण का गुण होता था। जैसे श्रृंगी ऋषि जन्म से 5 वर्ष में ही उनमें सब ब्राह्मण के गुण प्रकट थे, सब ब्राह्मण के गुण में लक्षित थे। ध्रुव महाराज में जन्म से ही क्षत्रिय गुण संपन्न थे, इसलिए 5 वर्ष में वो ठान लिए जंगल में तपस्या करने के लिए। इतना वीरता था, इतना धैर्य था, क्षत्रिय में बहुत धैर्य होता है। क्षत्रिय कभी भी विचलित नहीं होता है, कितना भी कठिन कार्य हो उसे घबराता नहीं है। तो 5 वर्ष का उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव महाराज जंगल में तपस्या करने के लिए गया, इतना उसमें वीरता था, साहस था, क्षत्रिय में बहुत साहस होता है। तो जन्म से भी ब्राह्मण होते थे। और वहीं महाभारत में हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा एक योग्य ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन द्विज बंधु, उसमें ब्राह्मण के गुण नहीं थे। योग्य ब्राह्मण के पुत्र थे अश्वत्थामा, लेकिन उनको द्विज बंधु कहा जाता है। द्विज बंधु मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है लेकिन उसमें क्षत्रिय का वैश्य का गुण हो, इसलिए उनको द्विज बंधु कहा जाता है। तो अश्वत्थामा ब्राह्मण हो करके भी वो द्रौपदी के 5 पुत्रों को जो नींद में सो रहे थे उनका कत्ल कर दिया था। ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता है, ब्राह्मण का ये गुण नहीं है। वो भी बच्चे सो रहे थे रात में, उनको सोए में ही काट दिया था। तो उस प्रसंग में कहा गया है कि ब्राह्मण बहुत क्षमाशील होते हैं। ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण है क्षमाशील, वो बहुत बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा कर देते हैं ब्राह्मण। लेकिन अश्वत्थामा जो है ऐसा नहीं कर सका। तो ब्राह्मण का यही सबसे बड़ा पहचान कि क्षमाशील होते हैं।
इसलिए जमदग्नि ऋषि जब परशुराम कार्तवीर अर्जुन का वध कर दिए, उसकी भुजाओं को काट दिए और काट करके उसकी भुजाओं को मार करके जब आए तो जमदग्नि ऋषि कहे कि पुत्र ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है ये, ब्राह्मण तो क्षमाशील होते हैं, कार्तवीर अर्जुन गाय ले गया था उसमें क्या हो गया था, ब्राह्मण तो क्षमा कर देते हैं, बहुत बड़े से बड़े अपराध को भी ब्राह्मण क्षमा कर देते हैं। तो जमदग्नि ऋषि परशुराम को कह रहे थे कि ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम इसके लिए प्रायश्चित करो। तो परशुराम सारे तीर्थों का यात्रा किए और कुरुक्षेत्र में जाकर अपने कार्य का प्रायश्चित किए। तो क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, ब्राह्मण का नहीं। से विश्वामित्र जब ब्राह्मणत्व को ब्रह्मर्षि हो गए तो वो यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ में अनेक असुर लोग उनके यज्ञ को विघ्न करके उसको खंडित कर देते थे। बक्सर में यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ को संपन्न करने के लिए अयोध्या में गए और भगवान श्री राम को लेकर के आए। यद्यपि वो भी मार सकते थे असुरों को, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विश्वामित्र भी धनुर्विद्या में बहुत आगे थे, बहुत धनुर्विद्या के पारंगत विद्वान थे, लेकिन वो ब्रह्मणत्व को प्राप्त कर चुके थे, ब्रह्मर्षि थे, इसलिए युद्ध क्षत्रिय का कार्य नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान राम को लेकर आए। अब भगवान राम जो है वहां असुरों को वध किए, बहुत सारे असुरों को वध करके और विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न किए। तो यहां पर दिया गया है कि कर्म से कुछ लोग ब्राह्मण बनते हैं, कुछ लोग जन्म से ब्राह्मण होते हैं, लेकिन कलि युग में जन्म से सबको शूद्र स्तर पर रखा गया है। अन्य युगों में जन्म की प्रधानता होती थी। द्रौपदी कह रही हैं जब अर्जुन अश्वत्थामा को बंदी बना करके ले आए बांध करके पशु की तरह, तो द्रौपदी महारानी कहती कि ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण गुरु होते हैं, ब्राह्मण तीन वर्णों के गुरु हैं। अन्य युगों में तो ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होते हैं। द्रौपदी ने कहा कि ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और वो भी आपके गुरु के पुत्र हैं, आपके गुरु ने आपको इतना विद्या सिखाया है। अर्जुन सबसे प्रिय शिष्य थे द्रोणाचार्य के, सारी विद्या सिखाए थे, जो विद्या अश्वत्थामा को नहीं प्रदान किए थे अर्जुन को प्रदान किए थे। द्रौपदी ने कहा कि ये ठीक नहीं है, ये गुरु पुत्र हैं और ब्राह्मण तो गुरु होते हैं, क्षत्रियों के वैश्य के शूद्र के गुरु होते हैं, और ऐसे भी आपका गुरु का पुत्र है तो मुच्यताम इसको छोड़ दीजिए, मत मारिए। द्रौपदी को दया आ गया कि जैसे मैं अपने पुत्र के विरह में दुखी हूं, वैसे कृपी जो है द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी, जो कृपाचार्य की बहन थी, कृपाचार्य के बहन से द्रोणाचार्य का विवाह हुआ था, तो कृपाचार्य और कृपी जोड़वे भाई बहन थे, जोड़वे संतान थे, इसलिए कृपाचार्य उनकी बहन का नाम कृपी हुआ और कृपी का विवाह जो है द्रोणाचार्य से हुआ। तो द्रौपदी ने कहा आपकी गुरु माता कृपी बहुत दुखी होगी, वो भी द्रोणाचार्य का ये प्रतिनिधि है, द्रोणाचार्य मर गए हैं और कृपी जो है सती नहीं हुई क्योंकि उसका पुत्र है जीवित है, जिसका पुत्र जीवित होता है वो स्त्री जो है सती नहीं होती है, पुत्र जो है पति का उत्तराधिकारी होता है, या पुत्र के रूप में पति ही जन्म लेता है। आत्मना जायते पुत्र, आत्मजा आत्मज, आत्मा ही जन्म लेता है पुत्र के रूप में, इसलिए आत्मज कहते हैं। तो द्रौपदी ने कहा कि द्रोणाचार्य ही अश्वत्थामा के रूप में है, पति ही पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लेता है, इसलिए उसको आत्मज कहते हैं। तो आपने गुरु गुरु को कैसे मारेंगे, आप कृतघ्न होंगे। जो गुरु ने आपको विजय दिलाने के लिए एकलव्य का अंगूठा ले लिया था, आपको विश्व विजयी बनाने के लिए, तो गुरु की कृतज्ञता को आप कैसे भूल जाएंगे। द्रौपदी कह रही हैं, इसलिए इसको मत मारिए, मुच्यताम मुक्त कर दीजिए, जो भी है गुरु का पुत्र है। और कर एक ये नितराम गुरु, तो गुरु होते हैं। तो यहां पर इस वंश में अनेक ऐसे राजा हुए हैं जो अपने कर्म के अनुसार उनका वर्ण जो है बदल गया है। कोई क्षत्रिय होकर वैश्य, जैसे यदु महाराज, यदु महाराज यद्यपि क्षत्रिय थे, जजाति और देवयानी के पुत्र थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय से यदु वंश निकला। ब्राह्मण और क्षत्रिय से यदु वंश की उत्पत्ति हुई, यादव लोग हुए। जजाति नहुष के पुत्र थे, क्षत्रिय थे, और जजाति का विवाह जो है शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ, जो ब्राह्मणी थी। तो देवयानी और जजाति से यदु महाराज हुए, तो यदु वंश की उत्पत्ति हुई। तो क्षत्रिय थे लेकिन कृषि गोरक्षा करने लगे तो वैश्य कहलाए, यद्यपि क्षत्रिय हैं। इसलिए भागवत में यादव क्षत्रिय कहा गया है, कंस यादव क्षत्रिय था, वसुदेव जी यादव क्षत्रिय थे, क्योंकि यादव क्षत्रिय से ही निकले हैं। जजाति के पुत्र यदु, इसलिए ये भी क्षत्रिय माने जाते हैं। लेकिन कर्म जो है आगे चलकर कृषि गोरक्षा करने लगे तो वैश्य कहलाए, इसलिए उनको यादव क्षत्रिय कहा जाता है। तो ब्राह्मण से और क्षत्रिय से यादव यदु वंश की उत्पत्ति हुई। तो ये बदल सकता है गुण कर्म विभाग सह। गीता में भगवान कहते हैं कि व्यक्ति का गुण और कर्म के आधार पर उसका जाति सूचक पहचान होता है। मान लीजिए कोई घड़ा बनाता है कुंभ, तो कुंभकार। कोई लोहे का काम करता है तो लोहार। कोई सोना का काम करता है तो सोनार, स्वर्णकार, कुंभकार। ऐसे जाति जो है गुण कर्म विभाग सह। तो इस तरह से अनेक राजा हुए जो भिन्न भिन्न वर्ण से जाने जाते हैं कर्म के आधार पर। विशेष करके इस वंश के अनेक राजाओं का इतिहास लोग सुने हैं और आगे सुनेंगे भी। तो यहाँ विशेष करके सुख कन्या का प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं कि ये सुख कन्या व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे उनसे भिन्न है, वो माया सुख हैं। जो सुखदेव गोस्वामी ने अपनी माया से एक सुखदेव गोस्वामी को ये कर दिए अपने पिता को संतुष्ट करने के लिए। देखिए पिताजी बहुत परेशान थे, भाग रहे थे, पीछे पीछे भाग रहे थे, कहते रुको रुको रुको। तो अपने पिता को बहलाने के लिए एक वैसा ही अपना विस्तार कर दिए, उसमें उलझ गए और जंगल में भाग गए। वो समझे कि हमारा पुत्र ही आ गया है, लेकिन वो नकली सुखदेव सुख थे। पिता अपना पुत्र समझकर उनका आलिंगन करने लगे, तब तक वो जंगल में बहुत समय तक जंगल में रहे। जंगल में रहे तो ये कैसी घटना है कि व्यास देव के अनेक शिष्य थे, जिनको व्यास देव पढ़ाया करते थे, बहुत सारा ग्रंथों को पढ़ाए, विशेष करके भागवत की शिक्षा दिए। तो कुछ समय के बाद उनको यह ज्ञात हुआ कि हमारा जो असली पुत्र है वो यह नहीं है। तो उन्होंने अपने शिष्यों को जंगल में भेजा और भागवत के कुछ कुछ श्लोकों को, जैसे भगवान के करुणा परक, माधुर्य लीला परक अनेक श्लोकों को दिए और वो लोग जंगल में जा करके पाठ करते थे। तो एक दिन सुखदेव गोस्वामी, जो मूल सुखदेव हैं, वो कुछ श्लोकों को सुने, भगवान के कृपा, कितने भगवान कृपालु हैं कि जिनको मारने के लिए पुतना अपने स्तन में विष लगाकर गई थी उसको भी माँ का गति प्रदान किए, दया करुणा, भगवान कितने करुणा में है। अहो बकीयम स्तन काल कूटम, जो स्तन में कालकूट विष भरकर गई थी मारने के लिए उसको भी अपना घर दे दिए। जैसे कोई आपको मारने के लिए राइफल लेकर आए, आप कहें कि हमारे इस बंगलों में रह जाइए, ऐसा कोई कर सकता है? कोई अपने शत्रु को अपना बंगला दे सकता? नहीं दे सकता है। भगवान इतने कृपालु हैं कि पुतना मारने के लिए आई थी और उसको अपना बंगला में स्थान दे दिए, अपना वैकुंठ दे दिए और माँ का गति प्रदान कर दिए। कोया कोया दयालु शरणम शरण्यम। यह जब सुखदेव गोस्वामी सुने तो बड़ा आकृष्ट हो गए और आए कि यह श्लोक कहाँ से आप लोगों ने सुना है। तो वो लोग कहे कि श्री व्यास देव से हम लोग पढ़े हैं। तो पुनः आते हैं और व्यास देव से भागवत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मवादी, पहले ब्रह्मवादी थे, भगवान के निराकार रूप की उपासना करते थे। भगवान के दो पक्ष हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि अव्यक्तम, जो मेरे अव्यक्त रूप की उपासना करता है वो योगी, उसको बहुत समय लगता है, उसको बहुत क्लेश उठाना पड़ता है। क्लेशो अधिक तरसते साम अव्यक्त शक्त चेत साम, अव्यक्त हो गतिर दुखम। आगे का तो जो अव्यक्त रूप की उपासना करता है वो मेरी ही उपासना है, लेकिन उसमें बहुत समय लगता है, सिद्धि प्राप्त करने बहुत समय लगता है। और साकार रूप की जो उपासना करता है उसमें श्रम कम है और सिद्धि जल्दी मिलती है। तो पहले अव्यक्त निराकार रूप की उपासना करते थे, निर्विशेष योगी। बाद में जब आए भागवत पढ़े तब भगवान के सकार ब्रह्मवादी से भक्त बन गए। तो यहाँ पर ये सुखदेव गोस्वामी जो है योगी थे, जन्मजात ही योगी थे, जन्म से ही विरक्त थे, विरक्त चूड़ामणि। सुखदेव गोस्वामी को कहा जाता है कि वो कौपिन नहीं पहनते हैं। सुखदेव गोस्वामी कभी कौपिन नहीं पहनते हैं, दिगंबर हैं और कोई पात्र लेकर नहीं चलते हैं। जहाँ जाते हैं गृहस्थ के बाद उतना समय रुकते हैं जितने समय में गोदोहन मातृणम, गाय दुहने में जितना समय लगता है उतना समय रुकते हैं और दूह को वो ईशांजलि में लेकर पी लेते हैं। कोई पात्र लेकर नहीं चलते हैं, इतने विरक्त हैं। और गृहस्थ के यहाँ उतना समय ही रुकते हैं, कोई कहे कि रुक जाइए कुछ खा लीजिए, तो केवल गाय का दूध पीते हैं और जंगल का कंदमूल खाते हैं। तो दो गाय दूहने में जितना समय लगता उतना समय रुकते हैं। तो प्रश्न उठेगा कि तो 7 दिन तक परीक्षित महाराज को कथा सुनाए, जहां भक्ति का ये हो वहां रुक जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के लिए 7 दिन एक आसन में बैठकर कथा कहे, लेकिन ऐसे अगर कहीं जाना है किसी के यहाँ तो उतना समय रुकते हैं जितने समय में गाय से दूध निकाल लिया जाए। और हाथ में कर पात्री, कर ही उनका पात्र है, हाथ में जितना आता है वो खा लेते हैं कर पात्री। इतने विरक्त चूड़ामणी है और कोई वस्त्र नहीं धारण करते हैं। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी से सकारवादी हो गए। जब भागवत पढ़े तो भगवान के नाम रूप गुण लीला का महिमा सुन करके भगवान के रूप में उनके नाम में आसक्त हो गए। चिराधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रति क्षण स्वादन लो लुपस, फिर इसका प्रति क्षण आस्वादन करने लगे भगवान के श्री राधा माधव के नाम रूप गुण लीला। भगवान में चतुर्धा माधुरी है, कृष्ण में 4 विशेष है, नाम माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी और कहीं कहीं वेणु माधुरी। ये 4 माधुर्य जो है सबसे उत्कृष्ट है। इस रस का आस्वादन करने लगे सुखदेव गोस्वामी और फिर भगवान के रूप में उनके नाम में उनके गुण में आसक्त हो गए और फिर आजीवन ब्रह्मचारी रह गए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की।